ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. جو وہ کھولتا ہے نا, وہ رب, وہ اللہ لوگوں کے لیے رحمت کے در کھولتا ہے تو کوئی ان کو بند نہیں کرنے والا, کوئی روکنے والا نہیں. وہ رحمت نچھاور کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اس کو. اللہ, یہ ایمان کی بات ہے, یہ پڑھنے والی بات نہیں, یہ تو ایمان لانے والی بات ہے کہ انسان اس بات کے اوپر پختہ ایمان لے آئے کہ رحمت اگر وہ میرے اوپر نچھاور کرنے کا ارادہ کر لے نا تو کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو پھر ہم ڈرتے کیوں ہیں, کیوں ڈرتے ہیں کہ وہ میرا رزق روک لے گا, وہ میرے اوپر کوئی نفع آنا ہوگا تو روک لے گا, وہ میرے مجھے کوئی چیز ملنی ہوگی تو روک لے گا. دیکھو جی اس نے بندش لگا دی, دیکھو جی اس نے ہماری روزی کے اوپر بندش لگا دی, میرے بچوں کے رشتے ہونے پہ بندش لگا دی. کیسے بندش لگا سکتے ہیں وہ؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها, اس پہ یقین نہیں ہے آپ کا؟ کوئی نہیں بندش لگا سکتا. وہ اللہ تعالیٰ رحمت کرنا چاہے, رحمت کیا ہے؟ رحمت اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ رحمت ہی تو ہیں. جو بھی نعمتیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے, صحت ہے, طاقت ہے, روزی ہے, اولاد ہے, اچھا ساتھی مل جانا ہے, عزت ہے, روزی ہے, رزق جس کو کہیں, امن و امان ہے, ایمان ہے, نیکی کی توفیق مل جانا ہے. یہ قرآن کریم یہ رحمت ہے, یہ تو سراسر اس کو تو الرحمہ کہا گیا قرآن میں, یہ وحی کا علم رحمت ہے. اللہ تعالیٰ دینا چاہتے کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. کسی کے ہسبینڈ مخالف ہو کے کھڑے ہو جائیں, کسی کے گھر والے, کسی کے خاندان والے کہ نہیں تو نے نہیں کرنا, یہ تو نے نہیں لینا, لیکن جس کو اللہ دینا چاہے. کوئی کمپنی والا ناراض ہو جائے, باس ناراض ہو جائے, کوئی کچھ ہے, رسک کوئی نہیں روک سکتا. کوئی نقصان دینا چاہ رہا ہے تو وہ اور نقصان نہیں دے سکتا. وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ, اور نہیں, اور جو وہ روکتا ہے تو نہیں کوئی دینے والا, نہیں کوئی کھولنے والا, یا نہیں کوئی بھیجنے والا اس کو اس کے بعد. وہ روک لے, مثلا بڑے نادان لوگ ہوتے ہیں جو کہ سوچتے ہیں کہ ہمیں صحت چاہیے نا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے دیکھ لی, وہاں سے تو نہیں مل رہی, چلو فلاں بابے کے پاس چلتے ہیں. کسی نے سوچا کہ میرے گھر کے اندر شوہر جو ہے وہ الٹے راستے پہ چل پڑا, کسی اور کے چکر میں پڑ گیا, تو اب اس کو واپس لانے کے لیے میں کیا کروں؟ اب میں فلاں سنا ہے ان کے پاس جائیں تو وہ کچھ دیتے ہیں, جہاں پہ 24 گھنٹوں کے اندر آپ کا کام ہو جائے ان کے پاس چلتے ہیں, جن کے ایڈز آتے ہیں اخباروں میں اور ٹی وی میں, چلو ان کے پاس جا کے دیکھ لیتے ہیں. شرطیاں انہوں نے لکھا ہوا ہے, آپ کے پیسے واپس اگر آپ کا کام نہ ہوا, آپ کا یہ ہو گیا وہ. مجھے بتائیں یہ آیت تو آپ پڑھ رہے ہیں, پھر اس آیت کا معنی کیا ہوا اگر انہیں کے ہاتھوں کے اندر ہے کہ وہ 24 گھنٹوں میں آپ کے کام کر دیتے ہیں, آپ محبوب قدموں میں آ جاتا ہے, پتہ نہیں کس کا کیا ہو جاتا ہے تو کیا نہیں ہوتا, امیگریشن کے بھی سارے کام ہو جاتے ہیں, ان کے پاس زیادہ پاور ہے؟ آپ کا ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا, جس کے لیے بند کر دے کوئی کھول ہی نہیں سکتا. یعنی الٹ بتایا گیا نا کہ اب جس کے لیے بند کر دے نا کھول بھی نہیں کوئی سکتا, کوئی کھلوا کے دیکھ لے. اب اللہ نے آپ کو اگر نہیں کوئی چیز دینی, کسی کا ویزا نہیں لگنا, تو وہ اب وہ لگوا کے دیکھ لے. یہ سب ڈھونگ ہے آپ کے ایمان کے لٹیرے ہیں. ایمان ڈوب جاتا ہے لوگوں کا ایسی جگہوں پہ جا کے, کوئی قبروں پہ پہنچا ہوا ہے تو دیکھیں کتنا رش ہوتا ہے وہاں پہ, کوئی ان بابوں کے پاس پہنچ گیا ہے, کوئی تعویذ دھاگوں والوں کے پاس پہنچا ہوا ہے, ان کی تو اچھی چاندی ہو گئی. یہ ہم کہتے ہیں ہمارا قرآن پہ ایمان ہے, یہ آیت نہیں کبھی پڑھی, کھول لیں گے تو پڑھیں گے. وہ تو پھر کیا دیتے نا آگے سے کہ نہیں جی آپ قرآن کی طرف نہ جاؤ نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے, کہ ظاہر ہے ان کو پتا ہے ہماری دکان چلے گی کیسے اگر یہ قرآن پڑھ لیں گے, تو ان کو تو یہ سب باتیں پتہ چل جائیں گی, پھر اسی لیے تو نہیں آنے دیتے. نہیں جی تم گمراہ ہو جائے گا, کہ گمراہ ان کے پاس ہو رہے ہو آپ, یہ تو ہدایت کا پیغام ہے. تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اللہ بند کر دے دروازہ کوئی کھول ہی نہیں سکتا, تو کھلوانے والا کون ہے جو اللہ سے کھلوا لے جا کے؟ اللہ تعالیٰ تو بند کر دے اور وہ کھلوا دے, کیا آپ کسی اور کو अल्लाह ताला से ज़्यादा पावरफुल समझते हैं, तो फिर तो यहीं पे तो तौहीद तो दूर चली गई, फिर तो शिर्क में पड़ गए। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ ईमान चला जाता है, लोग ईमान गंवा देते हैं, वो ये समझते नहीं हैं कि बाज़ मुसीबतें बाज़ आफतें इंसान के ईमान तक को उससे छीनने वाली बन जाती हैं, क्योंकि ईमान पहले ही कमज़ोर होता है, ईमान स्ट्रोंग होता नहीं। आफत आई और इंसान तिलमिलाने लगा, मुसीबत आई और इंसान कहता बस अब कोई तो दरवाज़ा मिल जाए, अब अल्लाह ताला का दरवाज़ा खड़काने का तो कोई वो नहीं है, क्योंकि वहाँ से तो मुझे मिलना नहीं, मैं दूसरों के दर खटकाता हूँ। तो इस आयत के ऊपर ईमान रखें, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखें। देखिए सलफ सालेहीन ना इन आयत को बड़ी अहमियत देते थे, बल्कि इन इस आयत और इसकी जैसी आयतों को वजीफा बनाए बताते थे। आमिर बिन कयास फरमाते हैं कि जब मैं सुबह को चार आयतें पढ़ लेता हूँ ना कुरान में से, तो फिर मुझे फिक्र ही नहीं रहती सुबह क्या होता है या शाम क्या होता है। अब वक्त इतना नहीं है कि मैं उन आयात की डिटेल में जाऊँ, आप उनके नंबर लिख लें, सूरह यूनुस आयत नंबर 107, सूरह तलाक आयत नंबर 7, सूरह हूद आयत नंबर 6 और ये वाली आयत। कहते हैं ये चार आयतें पढ़ लेते हैं तो कहते सुबह को शाम को मेरे साथ कुछ भी, और इन सारी आयतों में क्या है, अल्लाह ताला के हाथ में है सब कुछ। सब आयात का पैगाम यही है, कोई और नहीं जो के कुछ करा सके, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। और इसी ईमान को सुबह शाम ताज़ा करने की ज़रूरत है, बार बार ये पढ़ने की ज़रूरत है कि नहीं कोई कर सकता, नहीं कोई कर, ख़ास तौर पे जब इंसान के ऊपर कोई मुश्किल आए तो ठीक है वजीफे के तौर पे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन समझ के तो पढ़ें ताकि आपका ईमान तो मजबूत रहे, इधर उधर ना टकरे मारते फिरें। तो कोई तकलीफ आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई लगे कि जी फलाने ने बंदिश कर दी है ये, तो नहीं, सोच लें और बार बार इन आयात को पढ़ें, समझ जाए इन आयात को, कोई खोलने वाला नहीं अगर अल्लाह बंद कर दे। और मेरे से कोई दूर ही नहीं कर सकता, कोई अल्लाह की रहमत को मेरे से नहीं दूर कर सकता। हम कहते हैं नहीं जी फलाने नजर लगा ली, लोगों के पीछे हर वक्त पड़े रहते हैं, फलाने नजर लगा दी, फलाना ना होता तो ये मेरा काम हो जाना था, फलाने ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ये मुझे कह दिया, फलाने ने टोक लगा दी, फलाने ने ऐसा, छोड़े सबको, ये यकीन रखें कि अल्लाह ने मुझे देना है ना, उसकी रहमत मेरे तक पहुंचनी है, तो किसी की कोई चीज नहीं मुझे नुकसान दे सकती। आप यकीन जाने जब ये ईमान और जब ये बात दिल के अंदर घर कर जाए ना, मजबूत पकड़ ले जगह, इतना सुकून आ जाता है, इतना सुकून आ जाता है। थोड़ी देर के लिए ही आप सोच लें, क्योंकि हम इंसान है ना फिर भूल जाते हैं, बार 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 इसको ताज़ा करने की ज़रूरत है, इसीलिए रोज़ाना ही पढ़ लें तो अच्छी बात है। तो बार बार इसलिए पढ़ेंगे ताकि ये ईमान कहीं मेरे हाथ से चला ना जाए, ये यकीन मेरे हाथ से जाए नहीं, कमज़ोर नहीं हो जाए। तो ये यकीन आपको लाखों दुखों से निजात देने वाला बन जाता है, ये बिल्कुल हल्का फुल्का कर देगा, ये डिप्रेशन को दूर कर देगा, ये सारी फिक्रों से आज़ाद कर देगा। क्या फिक्र की क्या बात है, अल्लाह ताला ने जब करना होगा तो फिर ही है, खुद तो नहीं हो सकता। इसी वजह से आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज ख़त्म करते थे तो फरमाते थे अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैत वला मुआतिया लिमा मनात वला यनफउ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द, के हर फर्ज नमाज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू पढ़ के ना फिर ये पढ़ते थे, अल्लाह जिसको तू दे उसको कोई रोक नहीं सकता, जिसको तू रोक दे उसको कोई दे नहीं सकता, और ना किसी शान वाले बुजुर्गी वाले को उसकी शान तेरे आगे कोई काम कोई फायदा दे सकती। वला यनफउ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द, जद्द कहते शान, उसी को नफा नहीं दे सकती। हमने हो सकता है हम भी ये पढ़ते हों, लेकिन क्या इसी सोच के साथ पढ़ते हैं कि लामा लामा नहीं आनी मात है, अल्लाह तू देने पे आए कौन मना कर सकता, कौन रोक सकता है, कौन टाल सकता है, कोई भी नहीं, किसी की कोई ताकत हो सकती तेरे आगे, कोई हैसियत हो सकती तेरे आगे, अल्लाह अकबर। और आपको पता है ना रुकू रुकू की भी बहुत सारी तस्बीहात होती हैं और कौमा की भी तस्बीहात हैं। कौमा किसको कहते हैं जब रुकू से आप खड़े होते हैं, खैर बाज़ लोग तो इसको कुछ समझते ही नहीं है, वो तो खड़े ही नहीं होते, रुकू से सीधे ही सजदे में चले जाते। तो जब आप कौमा में खड़े हो ना सर उठाते थे नबी अलैहिस्सलाम, तो हम तो सिर्फ समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द करके तो हम जल्दी से सज्दे में जाने की करते हैं। लेकिन आपने कभी देखा होगा हरम में आप कितनी देर खड़े रहते हैं, भाई आप सोचते हैं मैंने तो पढ़ भी लिया, क्या बात है ये इतनी देर हो गई खड़े में। असल में क्योंकि और भी तस्बीहात हैं, जैसे समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दी व मिल अमा शिता मिन शैइन बाद, ये भी एक तस्बीह है। और ये जो आज ये मैं आपको बताने लगी हूँ इस आयत के साथ रिलेटेड, असल तो वह वो आपको बताना चाहती हूँ कि अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना सर रुकू से उठाते थे तो पढ़ते थे रब्बना लकल हम्दु मिल अस्समावाति वल अर्दी व मिल अमा शिता मिन शैइन बाद अहल सनाई वल मजद अहक्कु मा काल अल अब्द وَكُلَّنَا لَكَ عَبْدُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ। अगर आपको ये वाली याद है तो सिर्फ शुरू की आपको याद करनी, यार कितनी प्यारी है, रब्बना लकल हम्द, ए अल्लाह सारी हम्द तेरे लिए। अब तो हम्द का मतलब पता चल गया ना, कितनी मिल अस्समावाती वल अर्द, आसमानों और ज़मीन के भराव के बराबर, जितनी मतलब इन जितनी इनकी कैपेसिटी इनके अंदर जितना कुछ है ना उसके बराबर, और हर चीज़ के भराव के बराबर, जो तू चाहे, और बंदे ने जो तेरी तारीफ और तेरी बुजुर्गी बयान की है ना अल्लाह, तू उसके लायक है, अल्लाह अकबर, और हम सब तेरे ही बंदे, अल्लाह कोई रोकने वाला नहीं उस चीज़ को जो तूने दी, और कोई देने वाला नहीं जिस चीज को तू रोक ले, और दौलतमंद को उसकी दौलतमंदी उसकी शान तेरे आगे तेरे मुकाबले में बचा नहीं सकती। अल्लाह अकबर, किसी शान वाले की शान तेरे आगे कोई हैसियत नहीं रखती, कोई फायदा नहीं दे सकती। अल्लाह अकबर, तो ये बड़े प्यारे कलिमात है, कभी कभी बदल बदल के भी पढ़ने चाहिए ताकि इंसान कि नमाज में और खुशू हो जाए और ज़्यादा दिल लगे उसके अंदर। जब ऐसे कलिमात आपको समझ भी होगी तो कितना मज़ा आएगा ना नमाज पढ़ने में भी, और आप ये अगर वैसे आम नमाजों में लंबी है तो नहीं पढ़ सकते तो चलो कोई फुर्सत की नमाज़ें जैसे तहज्जुद वगैरह है उसके अंदर पढ़ लें कि जो उसमें आराम से बंदा जितना भी टाइम देना चाहे दे सकता है। तो इससे पता चला क्या कि हाजत रवा अल्लाह, मुश्किल कुशा अल्लाह, सब मेरे काम बनाने वाला अल्लाह, नफा नुकसान का मालिक अल्लाह, ठीक है, फिर ऐसों के पास जाना जो अपने खुद नफा नुकसान के भी मालिक नहीं, ये शिर्क को जाता है, लिहाजा इससे परहेज कीजिए। खास तौर पे ये सूरा हमारे अकीदे को सही करती है, इस चीज़ को प्लीज़ छोड़ दें, खुदा के लिए ये समझना छोड़ दें ये तो हमें पता नहीं क्या वहाबी बना देंगे, ये तो हमें ऐसे, ये तो पीरों को नहीं मानते, फ़कीरों को नहीं मानते, उनको नहीं मानते, वो जो कुरान कह रहा है ना खुदा के लिए उसको मान लो, किसी की भी ना मानो, कुरान की तो मान लो। ये तो आज का आपका सबक, किसी के दिल के अंदर ज़रा भी शिर्क कब्र परस्ती या ऐसी चीज़ें तो उससे निकाल देगा, अगर इसको वाकई साफ जहन के साथ सुना जाए और समझा जाए, और अगर आपने जहन में वही पहले तरीके रखने वही बातें लेके चलना है कि नहीं वो तो सारी ठीक है उनके मुताबिक बताओगे तो हम समझेंगे, तो फिर कौन आपको हिदायत दे सकता है। जब अगर दिमाग को बंद कर लेना है तो फिर कौन आपको राह दिखा सकता है। हाँ इंसान कुरान के आगे इस तरह से बैठे कि मैं राह हिदायत की तलाश में हूँ, मैं हिदायत पाना चाहती हूँ, जैसे कुरान बताएगा मैं वैसे चलूँगी, तब तो हिदायत मिल सकती है। और अगर आपने पहले के तसव्वुरात के साथ ही बैठना और पहले से सोच लेना कि नहीं ये बात मैंने नहीं सुननी, तो फिर क्या कोई समझा सकता है। याद रखिएगा अकीदा अगर सही ना हुआ ना तो आखरत में निजात नहीं हो सकती, ये याद रखिए। जितने मर्जी आप नमाजें पढ़ लें, जितने मर्जी आप रोजे रख लें, सदका खैरात और हज उमरे कर लें, अगर अकीदे के अंदर शिर्क है ना, सब जाया है। अकीदा इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मजाक की बात नहीं है ये, छोटी बात नहीं है ये।